तुम्हें गिफ्ट पसंद है तो बात खत्म। उसने साफ साफ तस्वीर खींचने से मना कर दिया। क्या जय डार्लिंग, तुम मास्क लगा लो। तभी जय की नज़र साइड में खड़ी लड़कियों पर गई। अब हम चलते हैं, रेणुका ने कहा। वो जाह्नवी का हाथ खींचकर उसे बाहर ले आई। जय ने रेणुका को पहचान लिया। ये वही कैफे वाली लड़की थी। उसके साथ जो लड़की थी, जय उसे पहली बार देख रहा था। जब जाह्नवी चेयर पर बैठी हुई थी तो उसने जाह्नवी के कपड़ों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया था। क्या साथ में जाह्नवी थी, जय ने अपने आप से कहा। ये लड़कियां तो ऐसे ही चली गईं, दिशा ने कहा, तस्वीर खींचने को कह रही थी। लगता है आपको देखकर डर गईं। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, जय ने कहा। मगर तुम तो अभी आए थे, अभी तो हमने प्यार भी नहीं किया। तुमने तो मुझे अपना गिफ्ट दे दिया, अभी मुझे भी तो खुश करने दो। उसने जय के गले में अपनी बाहें डाल दी। मेरा मूड नहीं है, उसने एकदम से अपने गले से दिशा की बाहें निकाली। दिशा ने वापस उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। जय डार्लिंग, उसने कहा। अब दिशा की हरकत से जय को गुस्सा आ गया। उसने दिशा की बाहों को फिर अपने गले से निकाला और उसे बेड पर धक्का दे दिया। अपनी लिमिट में रहो, वो गुस्से से बोला। बिना दिशा की तरफ देखे उसने अपना मास्क और गॉगल साइड टेबल से उठाए और कमरे से बाहर निकल गया। उन लड़कियों ने एक लिफ्ट ली थी तो वो दूसरी लिफ्ट से नीचे जाने लगा। जब तक वो हॉल में पहुंचा, लड़कियां हॉल में नहीं थीं। वो आराम से बाहर गया। वहां होटल के गेट के एंट्री की एक साइड पर फ्लावर्स और कमलों के लिए थोड़ी ऊंची जगह बनी हुई थी। जाह्नवी वहां बैठी थी और दोनों उसके पास झुकी हुई थीं। जाह्नवी, तुम ठीक तो हो ना, प्रीति ने पूछा। अच्छी बात है कि तुम अपनी दवाई अपने साथ रखती हो। पता नहीं तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि जय अगर तुमसे बड़ा है तो क्या हुआ, शायद वो तुम्हारी परवाह करेगा। मैं सोचती थी अब वो तुमसे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मगर जब शादी के बाद वो तुम्हें जानेगा तो तुम जैसी लड़की पाकर वो खुश होगा। उसकी लाइफ में तुम्हारी इम्पोर्टेंस होगी, शायद तुम्हारी दवाइयां भी छूट जाएंगी, रेणुका ने कहा। तुम क्यों फिक्र करती हो यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाह्नवी वहां से खड़ी हो गई। अब जाकर तुम कह देना और बता देना, कोई जरूरत नहीं है उससे शादी करने की, प्रीति ने कहा। बिल्कुल, अब तो गुंजाइश की कोई बात ही नहीं है कि तुम उससे शादी करो। अपने दादाजी को सारी बात बता देना, रेणुका ने कहा। तुम लोग अच्छे से जानती हो ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकता। मगर क्यों, उसकी दोनों सहेलियां गुस्से में थीं। इस बात से अनजान होटल के दरवाजे पर खड़ा जय उनकी बातें सुन रहा था। जिंदगी में मैंने दादाजी को मेरे लिए पहली बार इतना रिलैक्स देखा है। कभी वो मेरे लिए अंकल से लड़ते हैं, कभी आंटी से लड़ते हैं, कभी उनके बच्चों से, और वो इतने खुश हैं मैं बता नहीं सकती। कोई बात नहीं, शादी होने दो, देखते हैं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, चलो अब चलते हैं। मुस्कुराती हुई जाह्नवी भी उनके आगे होकर चलने लगी। वो तीनों वहां से चली गईं। जय भी उनके बाद पार्किंग एरिया में गया और अपनी गाड़ी में बैठा। जाह्नवी शाम को घर पहुंची। तीनों सहेलियां प्रीति के घर चली गई थीं। वो लोग वहीं बैठी रहीं। अब तो शादी होने वाली है, कोई आने जाने का टाइम होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए तुम्हें, उसकी आंटी ने उसे देखते हुए कहा। आंटी, मैं, रेणुका और प्रीति हम साथ में थे, बातों में हमें टाइम ही पता नहीं चला, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। आज तुमने पार्टी भी दी होगी, इतने बड़े मल्टीबिलियनर से तुम्हारी शादी हो रही है, सभी सहेलियों को बता रही होगी। सोनिया भी अपनी माँ के साथ खड़ी थी, उसने कहा। मगर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे इतना बड़ा है और भी बहुत कुछ सुना है मैंने उसके बारे में, सोनिया सोफे पर बैठ गई। तुम जैसी लड़की उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करती, कपड़े पहनने का तरीका तुम्हें नहीं है, बात करने का तरीका तुम्हें नहीं है, सबसे बड़ी बात तुम उसके साथ कभी अच्छी नहीं लगोगी, देख लेना वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी कहीं नहीं। जाह्नवी ने उन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ये तो लगता है हमसे बात भी करना नहीं चाहती, किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही, अभी से इसमें इतना नखरा है, सोनिया की छोटी बहन तानिया कहने लगी। अब वैसे शादी के बाद तो तुम्हें ये घर छोटा लगने लगेगा, तब तो तुम यहाँ आएगी ही नहीं, तानिया भी चुप नहीं हो रही थी। सोनिया जाह्नवी से 2 साल बड़ी थी तो तानिया जाह्नवी की उम्र की थी। तानिया से छोटा उनका एक भाई था। ऐसा नहीं था कि ये कोई गरीब लोग थे। जाह्नवी के अंकल सोमनाथ की अपनी रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री थी और काफी अच्छे खाते पीते लोग थे, मगर जयराज सिंघानिया के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। अब जाह्नवी उन तीनों को इग्नोर करती हुई अपने कमरे में चली गई। मूड उसका पहले ही बहुत ज्यादा खराब था और उन्होंने अपनी बातों से उसका दिल और दुखाया था। उसने अपनी प्लाजो की पैंट में से अपनी दवाई फिर निकाली और उस दवाई की 2 गोलियां निकालकर अपने मुंह में रख ली। फिर उसने जोर जोर से सांस ली, अपनी आंखों में आए हुए पानी को साफ किया। फिर थोड़ी देर में जैसे दवाई का असर हुआ, वो रिलैक्स हो गई।